नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के तेल अवीव दौरे से पहले ईरान ने धमकी दी है कि अगर इसराइल ने गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई की तो दुनिया भर के मुसलमानों और उसकी रेजिस्टेंस फोर्स को कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने चेतावनी दी कि गाजा का संघर्ष पूरे इलाके में एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। कैसे देखा जाए ईरान की इस धमकी को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, इसराइल ने साफ कर दिया है कि हमास के आतंकियों के खात्मे तक उसका अभियान जारी रहेगा। इस पर ईरान ने खुली चेतावनी जारी कर दी कि ऐसा हुआ तो महायुद्ध छिड़ जाएगा। कैसे लिया जाए ईरान की इस चेतावनी को, क्या इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है ईरान?
अक्षय जी, यदि हम अब तक के इसराइल और अरब वर्ल्ड के बीच के संघर्ष को देखें, या अगर हम सीधे सीधे इसराइल और हमास के संघर्ष को यदि देखें, तो हमें साफ समझ में आता है कि हमास का पीछे से ईरान ने किस तरह से फंडिंग के द्वारा, इक्विपमेंट प्रदान करके और भी अलग अलग तरीकों से हमेशा सपोर्ट किया, साथ दिया, समर्थन किया। अब ईरान जो ये धमकियां दे रहा है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो पहले से ही ये एक पूरा एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसमें और आग में घी डालने वाली बात ये हो गई। पूरी दुनिया जानती है कि ईरान हमास के साथ अपरोक्ष रूप से खड़ा हुआ है, और अब ईरान यदि इसराइल को इस प्रकार की धमकियां दे रहा है तो निश्चित तौर पर धमकियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी 1948 के बाद से हमने जो पूरा एक ये संघर्ष का इतिहास देखा है, इसमें हमने देखा है कि किस तरह से इसराइल ने ये जो तमाम आसपास के इसके देश हैं उनके खिलाफ युद्ध लड़ा, और बीच बीच में युद्धबंदी हुई, लेकिन छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो जारी रहे, और इसमें ईरान की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो वैसे ही स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, और इसमें ईरान के जो इस प्रकार के बयान हैं इनको हम हमास के समर्थन में, पैलेस्टीन के समर्थन में हम साफ साफ देख सकते हैं।
सवाल ये भी है कि ईरान क्या लेबनान और सीरिया के जरिए प्रॉक्सी वार छेड़ने की तैयारी में? अगर खामेनेई कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस जंग में कूद पड़ेंगे, क्या मध्य पूर्व के मुस्लिम देश साथ देंगे ईरान का, खासकर उसका विरोधी सऊदी अरब?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें एक तथ्य समझने की जरूरत है। हम जब ईरान और सऊदी के बीच के संबंधों को देखते हैं, कड़वाहट को देखते हैं, हम इस प्रकार के दो देशों को देखते हैं जहां शिया और सुन्नी विवाद है, तो वो अपने आप में बायलेटरल लेवल पर इनके विवाद है। लेकिन अक्षय जी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या हम क्षेत्रीय स्तर पर भी देखें, जब भी ये इस्लामिक दुनिया वर्सेस कोई और देश होता है तो इसमें ये तमाम देश एकजुट होकर के आते हैं, और तमाम ये जो आतंकी संगठन हैं ये भी आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। आप देखें कि हमास का किस प्रकार से साथ हिजबुल्ला दे रहा है, जबकि इनमें शिया और सुन्नी का यदि हम आंतरिक तौर पर देखें तो विभाजन है, और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से शिया बहुल देश और सुन्नी बहुल देश आपस में वैसे ही विवाद में घिरे रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की जो स्थिति है उसमें इसराइल की घेराबंदी और इसराइल के माध्यम से अमेरिका की कहीं ना कहीं घेराबंदी करना ईरान जैसे देशों का मुझे लक्ष्य नजर आता है। उन्हें एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और ईरान और अमेरिका के बीच के अगर आप संबंधों को देखें तो हम सभी जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान किस प्रकार से ईरान और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण रहे, कैसे अमेरिका ने जो तमाम पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, विशेषकर ईरान, यहाँ के जो ऑयल एंड गैस जो रिजर्व्स थे उस पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया, ईरान ने इसका विरोध किया, नेशनलाइज कर लिया अपने सारे ऑयल एंड गैस कंपनीज को और अपने इस तमाम एक डोमेन को। इसके बाद से ही हमने देखा कि कैसे ईरान और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो उसमें कभी सामान्य होते नजर नहीं आए, और फिर हम देखते हैं कि इसराइल को किस तरह से शुरू से ही 1948 के पहले से ही, बल्कि मैं कहूंगी जब बना भी नहीं था, किस तरह से अमेरिका ने इसराइल का ज्यूइश कम्युनिटी का समर्थन किया। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये तमाम जो इंट्रिंसिक पॉइंट्स हैं इनकी वजह से फिलहाल जो ये संघर्ष है ये और भी जटिल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
जी, और ईरान और हिजबुल्ला को काउंटर करने के लिए अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिमी देश अनेक युद्धपोत भूमध्य सागर में भेज रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट भी तेल अवीव की यात्रा पर हैं। कैसे देखा जाए उनकी इस विजिट को, खासकर जब रूस और चीन इसराइल की कार्रवाई की आलोचना कर चुके हैं? क्या बाइडेन की यात्रा तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखी जा सकती है? क्योंकि मध्य पूर्व में जंग छिड़ी तो ये अमेरिका के हित में तो नहीं होगी।
निश्चित तौर पर यदि ये जंग बढ़ती है, यदि इसमें अन्य देश शामिल होते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर अमेरिका पर पड़ेगा। हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु ना भूलें कि अमेरिका में अगले राष्ट्रपति चुनाव अब नजदीक हैं और बाइडेन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इसराइल में इस प्रकार की जो स्थितियां अभी बनी हुई है, इसराइल हमास के बीच का जो संघर्ष हो रहा है, इसमें जो बाकी की अरब दुनिया के देश शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, इसका किसी भी प्रकार का असर अमेरिका की राजनीति या अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़े। और हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल अमेरिका के 51st स्टेट, एक अनऑफिशियली ऐसा कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है, एक नेचुरल अलाई है ये दोनों देश। तो एक ये भी कारण है कि कहीं ना कहीं समर्थन है इसराइल को अमेरिका के द्वारा बहुत बड़ा, और इसीलिए बाइडेन इस यात्रा में प्रयास करेंगे कि स्थितियां सामान्य हो। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है अक्षय जी, क्योंकि तीर जो है वो कमान से निकल चुका। हमास ने जो ये 7 अक्टूबर को इतना दुर्दांत, इतना बर्बर आतंकी हमला इसराइल के ऊपर किया है, इसराइल की एक देश के रूप में जो पहचान है वो कभी पीछे न हटने वाले देश की पहचान है। तो इसराइल के बारे में कहा जाता है कि अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, और इसीलिए इसराइल ने भी घोषणा कर दी है कि हमास को समाप्त करने तक ये जंग जारी रहेगी। अब ये युद्ध मुझे हाल फिलहाल, ये संघर्ष मुझे हाल फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो भी देश और संगठन इसमें टिका रह पाएगा उससे एक बहुत बड़ा फायदा उसे मिलने वाला है। इसी कारण से हम देखें कि ईरान और जो दूसरे मुस्लिम देश हैं वो हमास को कहीं ना कहीं अपना परोक्ष और अपरोक्ष समर्थन दे रहे हैं ताकि हमास इस जंग में टिका रहे, और वहीं दूसरी ओर इसराइल को अमेरिका जैसे देशों का समर्थन मिल रहा है ताकि इसराइल भी इस जंग में टिका रहे। पर निश्चित तौर पर बाइडेन की जो ये यात्रा है इस स्थितियों को सामान्य करने के लिए है। निश्चित तौर पर वे चाहते हैं कि यहाँ शांति बहाल हो और इस संघर्ष की समाप्ति हो, क्योंकि पहले ही रशिया यूक्रेन युद्ध का जो थिएटर है वो खुला हुआ है और उसकी वजह से पूरे विश्व को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
जी, और एक चुनौती क्या भारत के लिए भी खड़ी हो सकती है? ईरान अगर इस जंग में घुसता है तो भारत पर इसका क्या असर देखती हैं आप? बड़ी मात्रा में कच्चा तेल हम आयात करते हैं वहां से, तेल का संकट एक बड़ा खतरा हो सकता है हमारे लिए?
हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अगर हम ईरान और भारत की ओर देखें तो ईरान भारत का हाल फिलहाल कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है, और यदि हम भारत की ओर देखें तो ईरान की जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स है। और यदि हम देखें तो बाकी के, जब हम ट्रेड रिलेशंस की ओर देखते हैं तो वहाँ हमें इतनी उन्नति या वहाँ इतनी बढ़त होती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन जब हम इस ऑयल एंड गैस के मार्केट की ओर देखते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध दोनों ही देशों के बीच में है, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ साझा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स भी हैं दोनों ही देशों के बीच में। लेकिन कुछ चुनौतियां भी दोनों देशों के बीच में हमने देखी, कुछ इरिटेंट्स भी हैं। तो पहले ही हम देखें कि संबंध बहुत अच्छे हम नहीं कह सकते हैं भारत और ईरान के बीच में। हालांकि कोविड के दौरान भारत ने ईरान की सहायता की, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से तालिबान जैसे संगठनों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, और भारत इस प्रकार के आतंकी संगठनों की खुले मंच से खुले तौर पर हमेशा भर्त्सना करता आया है, कंडेम करता आया है। तो अगर ईरान इस युद्ध में कूदता है, अच्छा, भारत की तरफ से हम पैलेस्टीन को तो मान्यता देते आए हैं निश्चित तौर पर, लेकिन हम हमास के इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसराइल के भी साथ खड़े हुए हैं। तो यदि ईरान इसराइल के खिलाफ कूदता है तो अक्षय जी निश्चित तौर पर भारत और ईरान के संबंधों पर, विशेषकर जो ये ऑयल एंड गैस से संबंधित जो दोनों ही देशों के बीच में एक व्यापार है, उस पर एक नकारात्मक असर पड़ने का खतरा तो दिखाई पड़ता है।
जी, फिलहाल तो ईरान ने इसराइल को खुली चेतावनी दे दी है और ये भी कह दिया है कि पूरे इलाके में जंग छिड़ सकती है। देखना होगा किसका क्या असर होता है। प्रोफेसर अंशु जोशी, शुक्रिया।